Iran Radio Podcast।
दोस्तों, जो पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं वो ईरान रेडियो द्वारा तैयार किया गया है। अगर आप दूसरे विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर सुन सकते हैं। इसराइल का मेटास्टेसिस पॉडकास्ट का ये तीसरा एपिसोड है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम कुछ दूसरे ज़ायनी संगठनों का जिक्र करेंगे जिनका गठन यूएनओ के रेजोल्यूशन 181 के पारित होने से पहले हुआ था। उसके बाद हम 1947 और 1948 में घटने वाली घटनाओं पर एक नज़र डालेंगे जिसके नतीजे में नकबा डे हुआ और वो दिन जब अवैध ज़ायनिस्ट रेजिम की स्थापना हुई। ईरान रेडियो से मैं हूं अहमद अब्बास, आप सभी को मेरा सलाम। ১৯৩১ में हगाना की सदस्यता छोड़ने वाले कुछ ज़ायनियों ने अर्गन आतंकवादी गुट की स्थापना कर ली। शुरुआत में उन लोगों ने अपने गुट का नाम हगाना बेत रखा। इसके संस्थापकों का मानना था कि हगाना ने ज़रूरत के मुताबिक सैन्य और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम नहीं दिया है। कुछ महीनों बाद इस गुट का नाम बदलकर अर्गन रख दिया गया। नाम की तब्दीली दरअसल इस गुट के लक्ष्यों और विचारधारा में बदलाव का संकेत था। ये एक अंडरग्राउंड काम करने वाला संगठन था जो फिलिस्तीनियों के बीच डर और भय उत्पन्न करने में विश्वास रखता था। संगठन के लोगों में जो नक्शा पेश किया गया था वो वही फिलिस्तीनी इलाका था जिस पर ब्रिटेन का शासन था, जिसमें पूरा जॉर्डन भी शामिल था। 1948 तक सक्रिय रहने वाले इस गुट ने सैकड़ों आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया। इस गुट के दृष्टिकोण की झलक बैतुल मुकद्दस स्थित किंग डेविड होटल के नरसंहार में आप देख सकते हैं, जो इसकी सबसे भयानक आतंकवादी घटनाओं में से एक है। ये होटल फिलिस्तीन पर ब्रिटेन के शासन का प्रतीक था। हगाना और अर्गन दोनों ही गुट इस पर हमले को अपना अधिकार समझते थे। शुरुआत में ये दोनों ही गुट इस होटल पर हमले के लिए सहमत थे, लेकिन बाद में हगाना इस नतीजे पर पहुंचा कि इस पर हमले का भारी परिणाम और खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, इसलिए उसने अपना इरादा बदल दिया। लेकिन अर्गन किंग डेविड होटल पर हमले के बारे में दूसरी तरह से सोचता था। अर्गन के सरगनाओं का मानना था कि लगातार जंगों से ब्रिटिश लोग उकता चुके हैं, इसलिए एक भारी नुकसान की बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनेंगी। इस तरह से ब्रिटेन में फिलिस्तीन से बाहर निकलने का मुद्दा एक राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है। 22 जुलाई 1946 को वेटर्स की यूनिफॉर्म में अर्गन का एक आतंकवादी दल दूध के 7 बड़े ड्रमों में डायनामाइट और TNT भरकर होटल के अंदर जा पहुँचा। उन्होंने इस विस्फोटक को डाइनिंग हॉल में रख दिया। 12:37 पर होटल में बड़ा धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि ऊपर वाले फ्लोर्स पर भी जो लोग मौजूद थे उनके फेफड़े और जिगर फट गए। इस हमले में 91 लोग मारे गए, जिनमें 28 ब्रिटिश, 41 फिलिस्तीनी और 17 यहूदी प्रवासी थे। 46 लोग घायल हो गए थे। मेनाहेम बेगिन हमलावरों का मुख्य सरगना था, जो आगे चलकर इसराइल का प्रधानमंत्री बना। इस आतंकवादी हमले के बाद जारी किए गए बयान में उसने लिखा था, इसराइल की सरजमीन पर अब यहूदियों और हिटलर को हमारे भाइयों को सौंपने वाले ब्रिटेन के बीच किसी तरह की कोई दोस्ती बाकी नहीं रही है। हमारे लोग इस शासन के खिलाफ युद्ध की हालत में हैं, जो आखिर तक जारी रहेगी। किंग डेविड होटल के धमाके के 2 साल बाद फिलिस्तीन से बाहर निकलकर ब्रिटेन ने साबित कर दिया कि अर्गन का अंदाज़ा बिल्कुल सही था। हमले के वक्त बेगिन की उम्र 33 साल थी, जिसे 1978 में 65 साल की उम्र में मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात के साथ शांति का नोबल पुरस्कार दिया गया। ये अवार्ड कैम्प डेविड समझौते पर हस्ताक्षर के कारण दिया गया था। नॉट रिम गुड। किंग डेविड होटल धमाके के पहले तक ब्रिटिश सरकार हगाना और अर्गन जैसे ज़ायनी संगठनों के साथ सहयोग करती थी, काम करती थी, लेकिन इस जंग के ऐलान के बाद ब्रिटेन ने उनके साथ हर तरह के संबंध तोड़ लिए। मगर नॉट रिम या यहूदी पुलिस गुट के साथ उसका सहयोग 1948 तक जारी रहा। ब्रिटेन ने नॉट रिम का गठन 1936 में यहूदी पुलिस के रूप में किया था, जो एक सक्रिय पुलिस दल माना जाता था। हगाना गुट ने इस अवसर का फायदा उठाया और नॉट रिम को एक प्रतिष्ठित यहूदी संगठन में बदल डाला। इस गुट का महत्व अन्य आतंकवादी गुटों की तरह अंडरग्राउंड आतंकवादी गतिविधियों की वजह से था। उसके बाद कई ज़ायनी गुटों ने ब्रिटेन से सैन्य प्रशिक्षण हासिल किया और फिलिस्तीन की सरजमीन पर आतंकवादी गतिविधियों को उन्होंने अंजाम दिया। जून 1936 में नॉट रिम गुट के सदस्यों की संख्या थी 1240, लेकिन उसी साल सितंबर में ये संख्या बढ़कर हो गई 2863, यानी 3 महीने में ये संख्या 100% से ज़्यादा बढ़ गई। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि नॉट रिम के सदस्यों को ब्रिटिश सेना से प्रशिक्षण हासिल होता था। 1938 में ब्रिटेन ने सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त 3,000 यहूदियों को इस गुट का सदस्य बनाया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद नॉट रिम को इसराइली पुलिस में बदल दिया गया। लेही गुट। लेही गुट एक ऐसा आतंकवादी गुट था जिसकी बुनियाद अब्राहम स्टर्न ने रखी थी, जो अर्गन गुट के संस्थापकों में से एक था। स्टर्न ने ब्रिटेन का मुकाबला करने के लिए कम्युनिस्ट प्रवासियों से मदद की मांग की। उसने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा कि ब्रितानी समाज से लड़ने के लिए वो एक हिब्रू देश की स्थापना के लिए तैयार है। स्टर्न ने देश के सभी संसाधनों और उत्पादों का राष्ट्रीयकरण करने और वर्गहीन समाज की स्थापना जैसे प्रस्ताव रखे थे। स्टर्न के नेतृत्व में लेही गुट ने ब्रिटेन से सहयोग करने वाले अर्गन गुट के विपरीत जर्मन के नाजियों के साथ सहयोग करने पर बल दिया। जर्मनों के सामने स्टर्न ने सहयोग के लिए यहूदी देश की स्थापना की शर्त रखी। इस गुट ने 1940 में यहूदी विरोधी नाजी जर्मनी के सहयोग से अपनी गतिविधियों की शुरुआत कर दी। इस गुट ने स्पष्ट रूप से आतंकवादी गतिविधियों को अपना उद्देश्य बनाया। इसने बहुत ही कम समय में फिलिस्तीन, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और यूरोप में लोगों का नरसंहार किया और कई अपराधों को अंजाम दिया। इस आतंकवादी गुट का सबसे भयानक अपराध देर यासीन का नरसंहार था, जिसमें अर्गन गुट ने भी सहयोग किया था। 7 अप्रैल 1948 को अर्गन और लेही ने मिलकर बैतुल मुकद्दस के निकट स्थित देर यासीन गांव पर हमला कर दिया। इस हमले में ज़ायनी आतंकवादियों ने 240 फिलिस्तीनियों का कत्लेआम किया। इस नरसंहार के करीब 10 दिन बाद जनवरी 1949 में बेन गोरियन ने एक टेलीग्राम भेजकर जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से माफ़ी मांगी। पारंपरिक रूप से जॉर्डन का शाही परिवार मस्जिदुल अक्सा का मुतवल्ली है। बेन गोरियन को इस बात की चिंता थी कि कहीं किंग अब्दुल्ला क्षेत्र के दूसरे देशों से देर यासीन के नरसंहार का बदला लेने की मांग न कर डाले। पालमाह गुट। पालमाह गुट हगाना की टास्क फोर्स थी, जिसका गठन 15 मई 1941 को किया गया था। इस टास्क फोर्स के गठन का उद्देश्य फिलिस्तीन में अरब सेनाओं के प्रवेश को रोकना और फिलिस्तीन से ब्रिटेन की वापसी की स्थिति में यहूदियों को सुरक्षा प्रदान करना था। पालमाह ने कई आतंकवादी हमले किए। इनमें से हम 31 दिसंबर 1947 के नरसंहार का जिक्र करना चाहेंगे। बलूद शेख के हमले में घरों को तबाह करने के अलावा 70 फिलिस्तीनियों को भी शहीद किया गया। गौरतलब है कि ज़ायनी सेना का गठन हगाना, अर्गन, लेही और पालमाह जैसे आतंकवादी गुटों के विलय से हुआ था। 1940 के दशक में ज़ायनी आंदोलन का यू टर्न, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। किंग डेविड होटल आतंकवादी हमला और लॉर्ड मुइन की हत्या जैसी घटनाओं के बाद ब्रिटेन फिलिस्तीनियों को शासन सौंपने के लिए तैयार हो गया था। पहले विश्व युद्ध में जीतने वाले देशों ने उस्मानी शासन के साथ एक समझौता किया था, जिसके आधार पर उपनिवेश रहे देशों को आज़ाद किया जाना था। हालांकि समझौते में फिलिस्तीन के मुद्दे को काफ़ी जटिल बना दिया गया था। इस स्थिति में ब्रिटेन ने फिलिस्तीन के भविष्य को संयुक्त राष्ट्र को सौंपने का फैसला कर लिया। इस तरह से वो फिलिस्तीनियों, ज़ायनियों, अमेरिका और फ्रांस के सामने खुद को जवाबदेह नहीं ठहराना चाहता था। फिलिस्तीनी सरजमीन पर भी नौबत यहाँ तक पहुँच गई थी कि फिलिस्तीनियों और ज़ायनियों में से कोई भी ब्रितानियों से बात नहीं करना चाहता था। फिलिस्तीनी अपनी अरब पहचान और अधिकारों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे और ज़ायनी पवित्र सरजमीन के बारे में हर तरह की बातचीत से इनकार को अपना मूल अधिकार समझते थे। आखिरकार फरवरी 1947 में ब्रिटेन ने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंप दिया और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी समीक्षा के लिए एक स्पेशल कमीशन गठित कर दिया। इस कमीशन ने सितंबर 1947 में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें फिलिस्तीन को दो देशों में विभाजित करने का सुझाव पेश किया गया था। इस प्रस्ताव को नवंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पेश किया गया। ज़ायनियों ने दुनिया भर के देशों का समर्थन हासिल करने के लिए कड़े प्रयास किए और अमेरिका ने उनका बढ़ चढ़ कर साथ दिया। ब्रिटेन ने एक ऐसे देश का समर्थन किया जिसमें दो राष्ट्र या कौमें रहती हों, एक ऐसा देश जिसमें अरब और यहूदी रहते हों। इसके लिए अमेरिका और फ्रांस का विरोध सिर्फ बाधा नहीं था, बल्कि ज़ायनियों का हद से ज़्यादा वहशीपन उसके लिए एक बड़ी चुनौती था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में वोटिंग के वक्त फिलिस्तीन की आबादी में यहूदियों का हिस्सा 33% था, जिसमें स्थानीय और प्रवासी यहूदी सब शामिल थे। इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ ने फिलिस्तीन का 55% हिस्सा यहूदियों को दे दिया और सिर्फ 45% हिस्सा अरब फिलिस्तीनियों को दिया। इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पारित कर दिया था।
सऊदी अरेबिया, नो, सोवियत यूनियन, यस, यूनाइटेड किंगडम, अब्स्टेन, यूनाइटेड स्टेट्स, यस,
द रेजोल्यूशन of the Dutch Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions.
इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद ब्रिटेन ने 14 मई 1948 को आखिरी कदम उठाया और फिलिस्तीन पर अपना शासन समाप्त कर दिया। ब्रिटेन ने यह कदम ऐसी हालत में उठाया जब अभी फिलिस्तीनी सरजमीन के भविष्य का निर्धारण होना बाकी था। ब्रिटिश सेना ने कई इलाकों में अपने सैनिकों की संख्या घटा दी या कई इलाकों को पूरी तरह खाली कर दिया और उनकी जिम्मेदारी नोट्रिम ग्रुप को दे दी। ब्रिटेन के फिलिस्तीन से बाहर निकलने और वहां की जिम्मेदारी ज़ायनी आतंकवादी गुटों को सौंपने के बाद फिलिस्तीनी जानते थे कि अब उनके साथ शांति का कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि शुरुआती दौर में ही इन आतंकवादी गुटों ने अपनी असलियत जाहिर कर दी थी। चौदह मई 1948 को बेन गोरियन ने तेल अवीव में ज़ायनी संगठनों के प्रमुखों की एक बैठक के बाद ज़ायनी शासन की स्थापना की घोषणा कर दी। इस दिन को फिलिस्तीनी और दुनिया भर के मुसलमान नकबा डे के तौर पर मनाते हैं। इस ऐलान के फौरन ही बाद अमेरिका ने ज़ायनी शासन को औपचारिकता प्रदान कर दी। हालांकि इस आतंकवादी शासन के सैनिक फिलिस्तीन की सरजमीन पर भी कब्जा करने में लगे हुए थे, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने फिलिस्तीन के रूप में मान्यता दी थी। ज़ायनी आतंकवादी गुटों ने इस योजना को अलेफ, बेत, गीमल और डालेट के रूप में तैयार किया था। अलेफ योजना को कभी भी लागू नहीं किया जा सका। 1945 में हगाना ने अलेफ योजना को इसराइल के एक तरफा स्वतंत्रता के लिए पहले कदम के तौर पर तैयार किया था, जो पूर्ण रूप से एक सामरिक योजना थी। हालांकि कुछ समय बाद ही इसमें बदलाव करके इसे बेत में बदल दिया गया। बेत यानी इसराइल के वजूद को अगर किसी चीज़ से खतरा हो तो उसे तुरंत कुचल दिया जाए। 1949 में ज़ायनी संगठनों के नेताओं की बैठक में ये फैसला किया गया था कि हमें ऐसा काम करना है। बेत योजना को लागू करने के लिए एक विस्तृत मसौदा तैयार किया गया। इसमें अरबों से सुरक्षा का एहसास छीनने और उनके प्रतिरोध के हौसले को ख़त्म कर देने पर जोर दिया गया था। गीमल योजना के तहत फिलिस्तीनियों के खिलाफ त्वरित कार्यवाही और उनके अधिकारों को कुचलने पर बल दिया गया था। दिसंबर 1947 से मार्च 1948 तक इस योजना पर अमल किया गया, लेकिन इसके बावजूद एक बड़ी संख्या में फिलिस्तीनियों ने अपने गांवों को खाली नहीं किया और वे अपना घर बार छोड़कर नहीं गए। डैलेट योजना के तहत विभिन्न इलाकों पर कब्जा करके उनका इसराइल में विलय करना था। इस योजना में फिलिस्तीनियों के घरों और उनकी आबादियों को आग लगाना, बम धमाके करके उड़ाना, बिजली और पानी की आपूर्ति काट देना, रास्तों को बंद कर देना और सड़कों को तोड़ देना जैसे अपराध शामिल थे। इस योजना को फिलिस्तीनी सरजमीन से ब्रिटेन के निकलते ही लागू किया गया। ज़ायोनी आतंकवादियों के आंकड़ों के मुताबिक जबरन अपने घरों से उजाड़े गए फिलिस्तीनियों की संख्या 5,20,000 थी, लेकिन खुद फिलिस्तीनी ये संख्या 10,00,000 बताते हैं। इतिहासकारों के मुताबिक 1947 से 1948 के बीच आधी फिलिस्तीनी आबादी को उनके घरों और वतन से उजाड़ दिया गया था।